नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्रिका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्रिका मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन, तेरे आने से तुझे पाने से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन, मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए,
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा, ये समझाऊं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों में गलातियों की पत्री नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हमने देखा जहाँ पर पौलुस कहता है कि विश्वास के द्वारा उद्धार पाकर व्यवस्था का पालन करने पर विश्वासी अनुग्रह से वंचित हो जाता है। अब वह कहता है कि उद्धार पाने वाले में आत्मा का फल उत्पन्न होना चाहिए। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 5 उसके 16 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम एक साथ बैठकर रेडियो के माध्यम से आपके वचन को सुनते और सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं उसे समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन से निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं, आप उनकी भी सहायता कीजिए। जो बीमार हैं उन पर कृपा दृष्टि कीजिए ताकि आज के वचन के द्वारा वे अपने जीवन में इस बात को महसूस कर सकें कि आप उनसे भी प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि वे भी चंगाई प्राप्त करें, अपने जीवन में सफलता को पाए। हाँ प्रभु, आप प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम आगे बढ़ें। विश्वास द्वारा उद्धार और आत्मा में आचरण द्वारा आत्मा का फल उत्पन्न होता है। अब पौलुस देह की लालसाओं और आत्मा के जीवन में तुलना करता है। यह संपूर्ण भाग कार्यविधि समझाता है। इस महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करते हुए मैं अपने अब तक के अध्ययन को दोहराना चाहता हूं और उसमें इस भाग को समायोजित करना चाहता हूं। हमारे अध्ययन का विषय है आत्मा द्वारा शोधन। पद 1 में पौलुस ने कहा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। मसीह ने हमें किस बात से स्वतंत्रता दिलाई है? पौलुस ने इस पत्र में अनेक बातें कही हैं। अध्याय 1 के पद 4 में वह कहता है कि मसीह ने हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया है, अतः हमें इसकी सेवा नहीं करना है। और तब अध्याय 2 के 20 पद में वह कहता है, अब मैं जीवित न रहा, आप और मैं मसीही जीवन जीने की क्षमता नहीं रखते हैं, मसीह हम में यह जीवन जी सकता है। कैसी अद्भुत स्वतंत्रता है यह। अध्याय 3 उसके पद 13 में वह कहता है कि हम व्यवस्था के श्राप से मुक्त कराए गए हैं, हम व्यवस्था के दोषारोपण और दंड से बचाए गए हैं। सच तो यह है कि हमें व्यवस्था से ही मुक्ति दिलाई गई है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में वह कहता है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। मेरे मित्रों, अब पौलुस देह की लालसा के जीवन और आत्मा के जीवन में अंतर को समझाता है। यह उसका आदेश है। तो आइए हम पढ़ें गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद। लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी न करोगे। ध्यान दीजिए, यह पद मसीही जीवन का एक महान सिद्धांत प्रकट करती है। आत्मा के अनुसार चलो। चलो के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है चलना फिरना। यह शब्द यूनानी दर्शन शास्त्र की पृष्ठभूमि से है, जहां गुरु चहल कदमी करता हुआ शिक्षा देता था। हमारे जीवन का सिद्धांत यह है कि हम आत्मा में चलें। यदि हम ऐसा करेंगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेंगे। आज लालसा का अर्थ है बुरी अभिलाषाएं, परंतु यूनानी भाषा में इसका अर्थ यह नहीं है। यहाँ लालसा का अर्थ है शारीरिक रुचियां, जैसे संगीत, कला, भलाई करना आदि। अतः ये अधिकतर अनैतिक नहीं है। बहुत सी बातें स्वयं में बुरी नहीं होती हैं, परंतु वे आत्मिक बातों का स्थान ले लेती हैं। जी हाँ, कुछ विश्वासी अपनी अभिरुचियों में ऐसे मग्न हो जाते हैं कि वे परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। अधिकांश मसीही जन टीवी के सामने बहुत समय बिताते हैं। मुझे गलत न समझे, हम टीवी भी देखते हैं। मैं उस नियम के अधीन नहीं हूँ जो मुझे टीवी देखने से रोकता है। टीवी में कुछ ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन के कार्यक्रम भी हैं, परंतु टीवी देखना शारीरिक लालसा है। यदि वह आपको आत्मिकता से दूर ले जाए तो वह गलत है। गलातियों की पत्री 5:17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। इस पद की लिपि में परिवर्तन लाने से इसका अर्थ और अधिक स्पष्ट होता है। शरीर आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, जिससे कि तुम्हें जो करना है वह न करने पाओ, अर्थात पुराना स्वभाव जो करवाना चाहता है। यह विचार करने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है। शरीर आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है। विश्वासी का स्वभाव नया है। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से यही कहना चाहा था जब उसने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:6 में, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। विश्वासी में पुराना शारीरिक स्वभाव रहता है और वह इस जीवन में उससे मुक्ति नहीं पाएगा। जी हाँ, यह सोचना कि हम उस पुराने स्वभाव से मुक्ति पा लेंगे तो बहुत बड़ी भूल है। पहला यूहन्ना की पत्री 1:8 में यूहन्ना लिखता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप में सच नहीं तो आप झूठे हैं। इस प्रकार एक सिद्ध मनुष्य भी झूठे के स्थान पर आ जाता है। हम प्रत्येक मनुष्यों में दो स्वभाव पाए जाते हैं, एक नया और एक पुराना। रोमियो की पत्री के अंतिम भाग में वह यही बात कहता है। पौलुस ने स्वयं इन दो स्वभावों की उथल पुथल का अनुभव किया था। अनेक विश्वासियों ने भी इसका अनुभव किया है। शरीर आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है, अतः हम जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। नया स्वभाव पुराने स्वभाव से विद्रोह करता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, वे एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। क्या आपने अपने जीवन में इसका कभी अनुभव किया है? रॉबर्ट रॉबिन्सन का एक भक्ति गीत है जिसका अनुवाद इस प्रकार से है, सब आशीषों के सोते आ और मेरे मन को तेरे अनुग्रह के गीत गवा, दया का सागर अनंत है, ऊंची स्तुति के गीत गवा। यह एक अद्भुत गीत है जिसका अंतिम पद है, भटकने की संभावना है प्रभु, मुझे बोध होता है, मेरे परमेश्वर को जिसे मैं करता प्रेम उससे दूर होने की संभावना है। किसी ने कहा है कि यह मेरा अनुभव नहीं है, मैं इसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूँ। अतः कुछ गीत की पुस्तकों में ये शब्द भी हैं, आराधना की संभावना प्रभु मुझे लगती, प्रेम की संभावना उस प्रभु से जिसकी मैं करता सेवा। अब कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं। मेरा स्वभाव है कि भटकूं और परमेश्वर जिससे मैं प्रेम करता हूं उससे दूर हो जाऊं। कभी कभी मेरा पुराना स्वभाव प्रभु से दूर होना चाहता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है? मुझ में एक नया स्वभाव भी है जो परमेश्वर की आराधना करना चाहता है। कभी कभी मैं अकेला ही अपने बाइक को चलाकर जाता हूँ और मेरा मन परमेश्वर को पुकार उठता है, ओह प्रभु तू कैसा महान है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। यह मेरे नए स्वभाव की अभिव्यक्ति है। मेरा पुराना स्वभाव उसकी स्तुति करने को और उससे प्रेम करने को अधीर नहीं होता है। प्रत्येक विश्वासी में एक नया और एक पुराना स्वभाव होता है। कुछ लोग कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आत्मा में आचरण करता हूँ या नहीं। स्वयं को धोखा ना दें, आप जान सकते हैं। पौलुस ने इसकी व्याख्या की है कि आप इससे चूके नहीं। गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें एक उच्च स्तर पर ले जाता है। अब पौलुस शरीर की लालसाओं की सूची हमें देता है। गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 19-21 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह व्यभिचार धार्मिक पाप और सामाजिक पाप तथा व्यक्तिगत पापों की सूची है। पहला हम देखते हैं व्यभिचार, वेश्यागमन, गंदे काम, अश्लील चित्र, लुचपन, पाशविकता, पर पीड़न, दूसरों को दुख देकर आनंद लेना, आज का यह आम स्वभाव है। दूसरा देखते हैं धार्मिकता के पाप, मूर्ति पूजा जो कुछ परमेश्वर के स्थान में आ जाए, जादू टोना, नशा, अन्य जाति धर्मों में ऐसा ही होता है। तब हम देखते हैं झगड़ा, और तब सामाजिक पाप, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विभाजन, विधर्म, गुटबंदी, डाह। यीशु ने कहा कि डाह करना हत्या करने के बराबर है। आगे देखते हैं कि व्यक्तिगत पाप, मतवालापन, लीला क्रीड़ा जो विलासिता है। ध्यान दीजिए कि वह सूची में अंत में लिखता है कि इनके जैसे और काम हैं, अर्थात अभी और बहुत से काम लिखे जा सकते हैं। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस न होंगे। प्रभु यीशु ने उड़ाव पुत्र का उदाहरण दिया था कि वह सुअरों में ही नहीं रहने लगा था, सुअरों के बाड़े में रहने वाले सुअर ही होते हैं। यदि पुत्र वहां पहुंच जाए तो बहुत दुखी होगा और निकलना चाहेगा। यदि आप वहां रह रहे हैं तो आप बहुत बड़े संकट में हैं। इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। अब शरीर के कामों की सूची देने के बाद पौलुस आत्मा का फल बताएगा। यहां अंतर पर ध्यान दें, शरीर के काम और आत्मा का फल। शरीर के काम वे हैं जो आप करते हैं। 10 आज्ञाएं शरीर को वश में रखने के लिए दी गई थी। अब मसीही जीवन आत्मा का फल लाता है। शरीर आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है। शरीर के कामों की उसने एक लंबी सूची दी जो वास्तव में अधूरी है, क्योंकि वह लिखता है कि ऐसे और भी बहुत से काम हैं। परंतु मसीही जीवन को आत्मा का फल उत्पन्न करना है, जो केवल आत्मा के चलाए चलने से ही संभव है, और वह अब आत्मा के फल की सूची देता है। आइए हम पढ़ें गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22-23 पद। लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। योहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु ने आत्मा के फल की चर्चा करते हुए कहा कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। वह हमारे जीवन से फल चाहता है और बहुतायत से चाहता है। जी हाँ, बीज बोने वाले के दृष्टांत में उसने कहा कि कुछ बीज 3 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए थे। आप मत्तयी सुसमाचार 13 अध्याय में देख सकते हैं। वह चाहता है कि हम बहुत फल लाएं। यह फल प्रभु यीशु अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। वह हमारे द्वारा अपना जीवन जीना चाहता है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि वह आपको मसीही जीवन जीने के लिए नहीं कहता है, वह आपके द्वारा स्वयं जीना चाहता है। कोई भी विश्वासी मसीही जीवन अपनी क्षमता में नहीं जी सकता। पुराना स्वभाव आत्मा का फल उत्पन्न नहीं कर सकता है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस लिखता है कि इस नए स्वभाव में आत्मा का फल उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। वह कहता है, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। यह हम में से अधिकांश लोगों की समस्या है। आप यह कैसे करते हैं? यह स्वयं ही करो वाली बात नहीं है। हम अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को पवित्र आत्मा का यह फल कैसे उत्पन्न करने देंगे? फल उत्पन्न करने का यह विषय हमारे लिए एक रुचि का विषय है। इस विषय के संदर्भ में मैं अपने खेत का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वह मेरे घर के सामने कटहल और आम के अनेक वृक्ष हैं। और वर्षा का जब समय आता है तो कोई ऐसा समय नहीं होता जब किसी न किसी वृक्ष में फल ना हो। मैंने देखा है कि फल उत्पन्न करने में वृक्ष का अपना परिश्रम नहीं है। उसकी शाखाएं आपस में नहीं कहती, आओ हम परिश्रम करके फल उत्पन्न करें, क्योंकि हमारे स्वामी को फल बहुत पसंद है। मुझे फल पसंद तो है, परंतु मैं देखता हूं कि वृक्षों की शाखाएं वर्षा और सूरज के लिए स्वयं को खुला रखती हैं और उनमें फूल लगते हैं और छोटे छोटे हरे फल आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वे विकसित होकर पकते हैं। एक और बात जो मैंने देखी वह यह है कि शाखाएं वृक्ष से जुदा नहीं होती, वे यहां वहां नहीं भटकती। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 4 पद में देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु ने कहा, डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मित्रों, हमारी समस्या यह है कि हम परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान होने का समर्पण तो कर देते हैं, परंतु जब वेदी गर्म हो जाती है तब हम भाग खड़े होते हैं। यदि हमें फल उत्पन्न करना है तो हमें मसीह यीशु में बने रहना है। पौलुस फल उत्पन्न करने का सिद्धांत समझा रहा है। फल समर्पण द्वारा उत्पन्न होते हैं, हमारे चारों ओर के मृदुल प्रभाव के निमित्त समर्पण द्वारा। मैं संसार के बारे में नहीं कह रहा हूं, पौलुस भी नहीं कहता है। हमें अपने अंतरवासी पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण करना है। पवित्र आत्मा फल उत्पन्न करना चाहता है, जिसे पवित्र आत्मा का फल कहते हैं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। यहाँ पर व्याकरण में एक वचन काम में लिया गया है जो व्याकरण की भूल नहीं है। फल एक ही है, प्रेम, और प्रेम से ही अन्य फल उत्पन्न होते हैं। प्रेम मुख्य एवं मूल है। जी हाँ मेरे मित्रों, प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़कर रखता है। सबसे बढ़कर हमें शत्रुओं को प्रेम करने की प्रेरणा देता है। तो आइए आज हम अपने जीवन में आज के वचन का अनुसरण करें और आत्मा के फल को अपने जीवन में बढ़ने दें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का है। आप पुराने स्वभाव में अपने जीवन को बिता रहे हैं या नए स्वभाव में? प्रभु का वचन कहता है कि जो शरीर है वह शरीर है और जो आत्मा है वह आत्मा है। हम दोनों एक साथ अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, और इसीलिए आत्मा शरीर के विपरीत कार्य करता है और शरीर आत्मा के विपरीत। यही कारण है कि पौलुस कहता है कि मैं जिसे करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता, और जिसे नहीं करना चाहता उसे करता हूं, क्योंकि पुराना स्वभाव हमारे शरीर के अंदर में हावी है, और इसलिए जब हम भली चीजों को करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर में लड़ाइयां होती है। मेरे प्रिय मित्र, आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, शारीरिक जीवन जो संसार की अभिलाषाओं में डूबा हुआ है, व्यभिचार, चोरी, हत्या, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, ये सारी शारीरिक बातें हैं। क्या हम इन बातों में उलझे हुए हैं या हम आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं, जिसका फल है आत्मा का फल जो प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारी बातें आत्मा के फल हैं जो आत्मा के स्वभाव को प्रकट करते हैं। मैं नहीं जानता कि आज आप किस स्थान पर हैं, लेकिन मुझे और आपको आज इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को, स्वयं को जांचने की आवश्यकता है, ताकि हम एक सही निर्णय ले सकें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आत्मिक जीवन जीना चाहता हूँ, मेरे जीवन से उस आत्मा के फल को मैं उत्पन्न करना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो निश्चय जानिए कि आपको परमेश्वर अवश्य ही मदद करेंगे। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें और उससे मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम शारीरिक नहीं, पुराना स्वभाव नहीं, परंतु आत्मिक जीवन, आत्मा के चलाए चल सकें, उस फल को उत्पन्न कर सकें जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं। हमारे भाई बहन, माता पिता इस समय जो निर्णय ले रहे हैं, आप उनकी सहायता करें, मेरी सहायता करें, ताकि हम सब निरंतर आप में बढ़ सकें और आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आपके साथ हो और आपकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
वादा ये रहा, भूले भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा, दर्द में ये समझाऊं, मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम। तेरे